पृष्ठ संख्या 512। सूफी कवियों से पूर्व ईरान की सामाजिक परिस्थिति एवं भाषा का स्वरूप। जिस प्रकार बेतार के तार का ग्राहक रिसीवर आकाश मंडल में विचरती, पृष्ठ संख्या 513, हुई विद्युत तरंगों को पकड़कर उनको भाषित शब्द का आकार देता है, ठीक उसी प्रकार कवि या लेखक अपने समय के वायुमंडल में घूमते हुए विचारों को पकड़कर मुखरित कर देता है। एक, अतः जब समाज में अवगुण जड़ कर लेते हैं तो उनका कुप्रभाव साहित्य पर भी जान पड़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप भाषा विकृत हो जाती है। मौलाना हाली के शब्दों में, सबसे बड़ा नुकसान जो शायरी के बिगड़ जाने या उसके महदूद सीमित हो जाने से मुल्क को पहुंचता है, वह उसके लिटरेचर और जबान की तबाही व बर्बादी है। दो, इस प्रकार आधुनिक फारसी जो 4वीं शती हिजरी 10वीं शती ईस्वी के आरंभ में विकसित हो रही थी और दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ रही थी, शीघ्र ही समाज की दुर्वस्था की लपेट में आ गई और अश्लीलता से अभिभूत हो गई। अब हम उन विकृत परिस्थितियों का उल्लेख करेंगे जिनके कारण आधुनिक फारसी भाषा अश्लील एवं अधम बन गई। मनुष्य की प्रकृति के अनुरूप नर प्रेमी है और नारी प्रेयसी। हिंदी में नारी प्रेमिका 3 और नर प्रेम पात्र, यह प्रायः प्रकृति के अनुसार है। परंतु ईरान की यह उपज की आशिक और माशूक दोनों ही नर हों, आश्चर्यजनक भी है और आपत्तिजनक भी। इसमें संदेह नहीं कि इसी कारण समस्त संसार में उच्च कोटि की मानी जाने वाली ईरान की प्रेम प्रधान कविता की प्रतिष्ठा धूल में मिल गई। एक, क, श्री गुलाब राय काव्य के रूप, दिल्ली, द्वितीय संस्करण, पृष्ठ 5-6। ख, श्री गुलाब राय प्रबंध प्रभाकर, जालंधर, सन 1949 ईस्वी, पृष्ठ 28। 2, मौलाना हाली, मुकदमा ए शेरो शायरी, लाहौर, मुबारक अली, सन 1936 ईस्वी, पृष्ठ 40। 3, प्रेम करने वाली स्त्री। मौलाना हाली ने अपने दो, पृष्ठ संख्या 514, ग्रंथों हयाते सादी 1 और मुकदमा ए शेरो शायरी में इस कुप्रथा का उल्लेख किया है। वे इसकी घोर निंदा करते हुए लिखते हैं, यह एक ऐसा कबीह, दूषित और नालायक, अनुचित दस्तूर प्रथा है जो कौमी अखलाक सदाचार को दाग लगाता है। लिहाजा अतः इसको जहाँ तक जल्द मुमकिन संभव हो सके तर्क करना त्यागना चाहिए। 2, अबू हलाल अस्करी के मतानुसार अरब अमर्द परस्ती 3 से अपरिचित थे, परंतु जब अरब 1वीं शती हिजरी 7वीं शती ईस्वी में अपनी विजय का डंका बजाते हुए खुरासान तक पहुंच गए और सैनिक चिरकाल तक अपने देश तथा कुटुंबियों से दूर रहे, तो उन्होंने कई सुंदर युवक बंदी बना लिए और उनको अपना गुलाम दास बना लिया। यह नवयुवक हर समय उनके साथ रहते थे। इस प्रकार अरबों को अमर्द परस्ती की लत पड़ गई। 4, और यह कुप्रथा प्रचलित हो गई। मौलाना शिबली के मतानुसार 1वीं और 2वीं सदी तक अरब की शायरी इस दाग से पाक रही। 3वीं सदी में इसकी इब्तिदा प्रारंभ हुई और 4वीं सदी में यह मजाक आम हो गया। 5, 1, मौलाना हाली हयाते सादी लाहौर मुबारक अली सन 1938 ईस्वी पृष्ठ 126 203-205। 2, मौलाना हाली मुकदमा ए शेर व शायरी लाहौर सन 1936 ईस्वी पृष्ठ 163-64। 3, साडोमी पुरुष मैथुन। 4, मौलाना शिबली शेरुल अजम भाग 4 लखनऊ 1916 ईस्वी पृष्ठ 187। 5, मौलाना शिबली शेरुल अजम भाग 4 लखनऊ सन 1916 ईस्वी पृष्ठ 187। ईरान में कविता के सूत्रपात का प्रायः वही समय था जब यह दुर्व्यसन अरब में घर कर चुका था। इसका प्रभाव ईरान पर पड़ना अनिवार्य था। जिन कारणों से अरब में यह चस्का लगा था, वैसे कारण ईरान में बहुत अधिक उपलब्ध थे। उस समय तुर्क गुलाम जो प्रायः रूपवान होते थे, घर घर फैल गए थे। सभाओं में मदिरा पान कराने और रंग चढ़ाने के कार्य उन्हीं चांद के टुकड़ों को सौंपे हुए थे। वे प्रतिपल छाया की भांति अपने चाहने वालों के साथ रहते थे। शनै शनै वे गुलाम और सेवक, माशूक और आँख की पुतली बन गए। तत्कालीन कवियों की रचनाओं में इस तथ्य का स्पष्ट उल्लेख है। कवि फर्रुखी सिस्तानी, मृत्यु 429 हिजरी एक, जो सुल्तान महमूद के प्रख्यात दरबारी कवियों में से था, लिखता है, तुर्के मन बर दिले मन, काम रवा गश्तो रवास्त, अज हमा तुर्को चू तुर्के, मन अमरोज कुजास्त। दो, अर्थात मेरा तुर्क माशूक मेरा दिल ले गया, और यह उचित ही है, क्योंकि सब तुर्कों माशूकों में से मेरे तुर्क माशूक जैसा आज और कहाँ है। बादशाह भी इस दुर्व्यसन से बच न सके। उनके दरबारों में नवयुवकों के चांद से मुखड़ों के कारण खूब चहल पहल हो गई। बादशाह नैतिक आदर्शों से पतित हो गए, वे अपने गुलामों के गुलाम बन गए। सुल्तान महमूद के यहाँ भी शशिवदन तुर्क गुलाम अयास का अत्यधिक आदर था। उसके रूप की प्रशंसा में कवि फर्रुखी सिस्तानी ने लिखा है, यके गोयद की आ सर्वेस्त बर कोह, दीगर गोयद गुले ताजा अस्त बर बार, न बर खीरा बदू दल दादा महमूद, दिले महमूद रा बाजी म पिंदार। तीन, एक, डॉक्टर इज़्ज़त अदर शफक, तारीख अदबियात ईरान 1336-1337 पृष्ठ 73। दो, कसायदे फर्रुखी, संपादक श्री सादानी, लाहौर, मुबारक अली पृष्ठ 29। तीन, कसायदे फर्रुखी, कसीदा दर मध्य अयाज, जब फर्रुखी सिस्तानी ने अयाज की प्रशंसा के पुल बांधे तो बादशाह को शक हो गया कि फर्रुखी भी अयाज पर लट्टू हो गया है। बादशाह ने फर्रुखी को दरबार में आने से रोक दिया। अंततः फर्रुखी की ओर से सभासदों के अनुनय विनय करने पर और फर्रुखी द्वारा बादशाह की शान में कसीदे लिखने पर बादशाह का शक दूर हुआ। तत्पश्चात दरबार में उसने एक कसीदा कहा जिसका मतलब निम्नलिखित था, ए नदी माने शहर यारे जहां, ए बुजुर्गाने दरगहे सुल्तान, अर्थात ए संसार के बादशाह के साथियों, ए बादशाह के दरबार के महानुभावों, कसायदे फर्रुखी, संपादक श्री सादानी, भूमिका, लाहौर, मुबारक अली पृष्ठ दाल, पृष्ठ संख्या 516। अर्थात कोई कहता है कि वह पर्वत पर सरो पेड़ है, कोई कहता है कि वह शाख पर फूल है। महमूद ने उसको अकारण दिल नहीं दिया, महमूद का दिल हंसी खेल नहीं। महमूद उस पर जी जान से विमुग्ध था और हर समय उसके नाम का जाप करता था। उसके प्रेम की चर्चा फारसी साहित्य में यत्र तत्र उपलब्ध है। उदाहरणार्थ निजामी अरूजी समरकंदी कृत चहोर मकाला में वर्णित एक कथा संक्षेप में इस प्रकार है, एक रात सुल्तान महमूद नशे में चूर था। इस अवस्था में उसकी दृष्टि अयास पर पड़ी, उसकी अलके मुखमंडल पर बिखरी हुई थी। महमूद अलकों पर प्रेम पूर्वक हाथ फेरने लगा, तदनंतर अयास को आदेश दिया कि उनको काट दें। अयास ने देखते ही देखते आज्ञा का पालन किया। प्रातःकाल जब महमूद सोकर उठा तो अयास की सूरत देखकर बहुत व्याकुल हुआ। उस समय मल्लिक कुशवरा एक, अंसूरी बल्खी, मृत्यु 331 हिजरी ने निम्नलिखित दो बैती कही, कै एबे सरे जुल्फे बुत अस कातन अस्त, चे जाए बगम निशस्तनो खास्तन अस्त। एक, राजकवि, उनसरी सुल्तान महमूद के दरबार का राजकवि था, पृष्ठ संख्या 517। जाए तरबो नशाता में ख्वास्तन अस्त, किया रास्तने सर्व जे पेरास्तन अस्त, अर्थात यदि माशूक की अलकों की काट छाट हो गई है तो इसमें दुख की क्या बात है, यह तो और भी अधिक खुशी का अवसर है, क्योंकि सर्व को जब छांट दिया जाता है तो और अधिक सुंदर हो जाता है। इसे सुनकर बादशाह अत्यधिक प्रसन्न हुआ और उसका दुख काफूर हो गया। एक, इस प्रकार फारसी साहित्य में सौंदर्य और प्रेम के वर्णनों में अयाज और महमूद के नाम लिए जाते हैं। देखा देखी कवि भी इस रस सागर में निमग्न हो गए, उन पर भी इस लत ने रंग जमाया। वे जो जी को न मार सके और तरुण तुर्कों के हाथ का खिलौना बन गए। सुप्रसिद्ध फारसी कवि दकीकी, जिसे सर्वप्रथम मौलिक मसनवी लिखने का श्रेय प्राप्त है, अमीर नूह बिन मंसूर के शासनकाल 367-370 हिजरी में अपने तुर्क गुलाम के ही हाथों मारा गया। दो, कवि फर्रुखी के एक कसीदे से स्पष्ट है कि उसका भी एक माशूक था, जिसकी आंखें हिरण की आंखों जैसी और जुल्फे हिरण के टेढ़े मेढ़े सिंगों जैसी थी। इस कसीदा में वर्णित है कि एक बार सुल्तान महमूद का बेटा मोहम्मद शिकार खेलने गया था। फर्रुखी भी साथ था। मोहम्मद ने बहुत से हिरण शिकार किए। फर्रुखी ने एक हिरण की आंखें और उसके बल खाते हुए सींग देखे। उसे अपने माशूक की आंखें और जुल्फे याद आईं। वहीं बैठ गया और फूट फूट कर रोया। किसी ने मोहम्मद से फर्रुखी की दुख गाथा कह सुनाई। उसे सुनकर मोहम्मद ने एक सुंदर जीवित हिरण फर्रुखी के एक निजामी अरुजी समरकंदी चहार मकाला लाहौर मुबारक अली सन 1942 ईस्वी पृष्ठ 161-64। दो क प्रोफेसर ब्राउन अ लिटरेरी हिस्ट्री ऑफ पर्शिया भाग एक लंदन सन 1925 ईस्वी पृष्ठ 460। ख डॉक्टर इज़्ज़त अदा शफक तारीख अदबियात ईरान 1336-1337 पृष्ठ 55 पृष्ठ संख्या 518 पास भेज दिया। एक कवि मोहम्मद बिन अली सोजनी समरकंदी मृत्यु सन 569 हिजरी का माशूक एक तरुण सोजनी दर्जी था, इसलिए उसने अपना उपनाम सोजनी रखा। दो हमारे विचार में अमर्द परस्ती के फैलने के निम्नलिखित दो मुख्य कारण थे। प्रथम पर्दा प्रथा। स्त्रियां पर्दों में रहती थीं, वे पुरुषों की पहुंच से बाहर थीं। इसके विपरीत तरुण तुर्क हर समय साथ रहते थे, उनसे मिलना जुलना तनिक भी असंभव नहीं था। अतएव घर घर आग लग गई और बड़े बड़े संयमी इसकी लपेट में आ गए। द्वितीय विलासी शासक। विलास जर्जर तत्कालीन शासकों की अमर्द परस्ती के प्रति विशेष रुचि थी। वे नैतिक आदर्शों से पतित हो गए, परिणाम स्वरूप जनता को भी अति प्रोत्साहन मिला और वह भी अस्वस्था काम लिप्सा में तल्लीन हो गई। इस प्रकार समस्त समाज का मानस पूर्णतः विकृत हो गया। जब फारसी शायरी का प्रारंभ हुआ तो समस्त देश युद्धों और विप्लवों से आक्रांत था। तत्कालीन बादशाहों ने सेना में तरुण तुर्क भर दिए। उस समय ईरान खुरासान आदि में प्रत्येक सैन्य विभाग में तुर्क ही तुर्क दृष्टिगोचर होते थे। उनकी चाल ढाल हाव भाव बात गात सब कुछ मनोहर था। ऐसा प्रतीत होता था मानो कामदेव की वृहद सेना हो। अयाज भी सेना में उच्च पदाधिकारी था और उसने बड़े बड़े मैदान मारे थे। तीन एक कसायदे फर्रुखी संपादक श्री सादानी लाहौर मुबारक अली पृष्ठ 112-113। दो सोजनी की निस्बत लोगों का बयान है कि उसका माशूक एक दर्जी बच्चा था, इसलिए उसने यह तखल्लुस रखा। मौलाना शिबली शेरुल अजम भाग 4 लखनऊ सन 1912 ईस्वी पृष्ठ 168। तीन कसायदे फर्रुखी कसीदा दर मधे अयास पृष्ठ संख्या 519। सेना में माशूक तुर्कों के भर्ती हो जाने का परिणाम यह हुआ कि भाषा पर सैनिक प्रभाव पड़ा, जैसा कि फर्रुखी की भाषा से स्पष्ट है। बरकश ए तुर्को ब यकूस फगन ई जामा ए जंग चंग बरगीरो बने दरका ओ शमशीर अज चंग। अर्थात ए तुर्क अब लड़ाई के कपड़े उतार दे, सितार उठा ले और तलवार तथा ढाल रख दे। इसके साथ साथ फौजी शब्दों के बलबूते पर कई पारिभाषिक शब्द और मुहावरे निर्मित हो गए, जैसे जदन का अर्थ है पीटना। इस शब्द को अन्य शब्दों के साथ जोड़कर बीसियों मुहावरे बनाए गए, जैसे हर्फ जदन, हर्फ प्लस जदन बराबर बोलना, नवा जदन, नवा स्वर प्लस जदन बजाना, गाम जदन, गाम कदम प्लस जदन बराबर चलना, सैद मैं जदन, मैं मदिरा प्लस जदन मदिरा पान करना, दम जदन, दम श्वास प्लस जदन बराबर सांस लेना। इसी प्रकार कुश्तन का अर्थ है जान से मारना। इसे चराग दीपक के साथ जोड़ने पर चराग कुश्तन बनाया गया, जिसका अर्थ हुआ दीपक को बुझाना। पहाड़ की चोटी को तेगे तलवार कोह कहा जाने लगा। थोड़ी दूर का फासला बताने के लिए तीरे परताब अर्थात वह दूरी जो तीर फेंकने वाले और तीर के लक्ष्य के बीच हो प्रयुक्त होने लगा। ऐसे असंख्य पारिभाषिक शब्द एवं मुहावरे हैं। प्रेम प्रधान कविता में भी ऐसे शब्दों मुहावरों रूपकों उपमाओं आदि का प्रयोग किया जाने लगा, जिनका संबंध फौजी सामान सैनिक सामग्री से था। कुछ उपमान द्रष्टव्य हैं। अबरू भ्रू के लिए खंजर कटार, पलकों के लिए तीर बाण, जुल्फ अलक के लिए कमंद पाश फंदा, ऊंची दीवारों पर चढ़ने की एक विशेष प्रकार की रस्सी, आंखों के लिए कातिल वधक हिंसरक। पृष्ठ संख्या 520। स्पष्ट है कि इस काल की फारसी कविता श्रृंगार और वीर भावों से ओतप्रोत है, परंतु सौंदर्य प्रियता रसिकता भोग विलास आदि के तत्कालीन प्रभावों के कारण वीर भावों की अपेक्षा श्रृंगार भावों की अधिक अभिव्यंजना हुई है। रूपवान युवकों को आलंबन बनाकर कवियों ने अपनी उत्कट श्रृंगार भावना की मार्मिक अभिव्यक्ति की है, जिसके कारण अश्लीलत्व दोष उत्पन्न हो गया है। हिंदी साहित्य की रीतिकालीन कविता में तथा इस फारसी कविता में इस दृष्टि से बहुत समानता है। केवल अंतर यह है कि नारी के स्थान पर नर आलंबन है। पंडित रामचंद्र शुक्ल ने निम्न विचार, जो हिंदी साहित्य का इतिहास में रीतिकालीन कविता के विषय में लिखे हैं, वे इस काल की फारसी कविता पर भी घटित होते हैं। वास्तव में श्रृंगार और वीर इन्हीं दो रसों की कविता इस काल में हुई, प्रधानता श्रृंगार की ही रही। इससे इस काल को रस के विचार से कोई श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है। श्रृंगार के वर्णन को बहुतेरे कवियों ने अश्लीलता की सीमा तक पहुंचा दिया था। पंडित रामचंद्र शुक्ल, हिंदी साहित्य का इतिहास, काशी, संवत 2003, विक्रम, पृष्ठ 241। पांचवी छठी शताब्दी हिजरी, 11वीं-12वीं शती ईस्वी में फारसी कविता यौवन पर थी। उसमें कविता के प्रत्येक प्रकार के साथ साथ हज्ब वह शायरी जिसमें निंदा हो और हज्ल वह हंसी मजाक की शायरी जिसमें अश्लीलता एवं फक्कड़पन हो का भी आविर्भाव हो गया, जिसमें कविता में गाली गलौज एवं निंदाजनक शब्दों का भी समावेश हो गया। वस्तुतः ये फारसी शायरी एवं भाषा के गिरे दिन थे, जब कवियों को कसीदा लिखने का पूरा सिला नहीं मिलता था तो वे अपने आश्रयदाताओं के विरुद्ध हज्ब एवं हज्ल लिखते थे, जिनमें गालियों की बौछार होती थी। गालियाँ भी बहुत अश्लील एवं गंदी होती थीं। अनवरी, मृत्यु सन 587 हिजरी, सोजनी, मृत्यु सन 569 हिजरी, खाकानी, मृत्यु सन 595 हिजरी, ये थे तो उच्च कोटि के कवि, परंतु अत्यधिक ओछे थे। तनिक कम मिलने पर गालियों का झाड़ बांध देते थे। मौलाना शिवली के शब्दों में हज्ब का मजाक, शोक, रफ्ता रफ्ता, शनै शनै, पृष्ठ संख्या 521, इस कद्र बढ़ा कि जहाँ किसी से रंजिश वैमनस्य हुई, हज्ब शुरू हो गई। आदमियों से गुजर कर जानवरों तक की हज्बे लिखते थे। पांचवी और छठी सदी में चूंकि मुल्की तमद्दुन सभ्यता खराब हो गया था, इसलिए जबान में फुहश अश्लील अल्फाज आ चले थे। हज्ब ने उसको और तरक्की दी, यहाँ तक कि मुल्क की जबान खराब हो गई। एक उस युग की अनैतिकतापूर्ण परिस्थितियों का लाभ उठाकर मुट्ठी भर तातारियों ने 7वीं शताब्दी हिजरी, 13वीं सती ईस्वी में ईरान की ईंट से ईंट बजा दी। देश का रहा सहा नैतिक बल भी समाप्त हो गया। इससे फारसी काव्य पर भी प्रभाव पड़ा। इसमें श्रृंगार की उन्मादकारिणी उक्तियों का बोलबाला हो गया। परिणाम स्वरूप भाषा अत्यधिक अश्लील एवं अशिष्ट हो गई। मदिरा पान के भयंकर व्यसन के कारण तरुणों के नख शिख वर्णन के लिए जाम प्याला, शीशा बोतल प्याला आदि को उपमानों के लिए चुना गया, यथा आँख को पहले कातिल वधिक हिंसक हत्यारा तथा सफाक क्रूर निर्दय रक्तपाती कहते थे, परंतु तत्कालीन कवि आँख की उपमा जाम शीशा आदि से देने लगे। समाज में इतनी अनैतिकता फैल गई थी कि ऐसी भाषा को दूषित नहीं समझा जाता था। शेख सादी जैसा समाज सुधारक भी इस अश्लील भाषा को दोष मुक्त न कर सका, अपितु वह भी इस प्रकार की भाषा के प्रभाव से बच न सका। उसकी अत्यंत ख्याति प्राप्त पुस्तक गुलिस्तान के 5वें अध्याय 2 में ऐसी भाषा का प्रयोग किया गया है जो एक शिष्ट व्यक्ति नहीं कर सकता। एक मौलाना शिबली, शेरुल अजम, भाग 4, लखनऊ, सन 1912 ईस्वी, पृष्ठ 169। दो गुलिस्तान, नवल किशोर प्रेस, कानपुर, सन 1873 ईस्वी, पृष्ठ 76-90। इस अध्याय का विषय है इश्क व जवानी, सूफी कवियों का भाषा पर प्रभाव। तसव्वुफ के प्रभाव से भाषा पुनः शिष्ट हो गई और धीरे धीरे विकृति का सर्वथा लोप हो गया। पहले पहल पूर्ववर्ती कवियों की प्रेम संबंधी रचनाओं के फलस्वरूप कहीं कहीं सूफी कवियों की भाषा में अश्लीलत्व दोष के दर्शन पृष्ठ संख्या 522 होते हैं। यथा प्रख्यात सूफी कवि मौलाना रूम की मसनवी में कुछ कथाएं एक ऐसी ही भाषा में लिखी हुई हैं। ख्वाजा हाफिज इराकी मगरिबी ओहदी आदि की रचनाओं में भाषा का अकलुष एवं सुंदर रूप दृष्टिगत होता है। मौलाना शिबली के शब्दों में सातवीं सदी में तसव्वुफ का मजाक आम हुआ। ओहदी मरागी ओहदी किरमानी मगरिबी हजरत अमीर खुसरो वगैरह की बदौलत यह रंग तमाम मुल्क पर छा गया। उस वक्त जवान और ख्यालात साफ हुए और जबान शायस्ता शिष्ट और महजबो परिष्कृत सभ्य हो गई। दो यहाँ तक कि आगे चलकर तसव्वुफ स्वयं नहीं रहा परंतु भाषा की शिष्टता बनी रही, उसको तनिक भी आँच न आई। उर्फी नजीरी आदि परवर्ती कवियों की भाषा निर्दोष है। प्रवाद है कि उर्फी ने निम्नलिखित शेर फैजी अथवा अबुल फजल 3 की हज्ब में लिखा था। बामन अज जहल मुआरिज शुदा नामुन फैले की गरश हज्ब कुनम ई बुदश मदहे अजीम 4 अर्थात एक निर्लज ने मूर्खतावश मेरे साथ झगड़ा मोल लिया। यदि मैं उसकी निंदा करता हूँ फिर भी वह उसको अपनी अत्यधिक प्रशंसा समझता है। उपर्युक्त शेर की भाषा शिष्टता की परिधि का अतिक्रमण नहीं करती। 1 उदाहरणार्थ मसनवी की सर्वप्रथम कथा देखिए। 2 मौलाना शिबली शेरुल अजम लखनऊ भाग 4 सन 1912 ईस्वी पृष्ठ 269। 3 मौलवी अब्दुल मजीद खान अजीबो गरीब नवल किशोर प्रेस लखनऊ सन 1930 ईस्वी पृष्ठ 151। 4 कसायदे उर्फी नवल किशोर प्रेस लखनऊ सन 1928 ईस्वी पृष्ठ 39। पूर्ववर्ती कवियों ने प्रेम संबंधी कविताओं में जिन शब्दों का प्रयोग किया था उन्हें सूफी कवियों ने ज्यों का त्यों ले लिया और उन्हें सांकेतिक पृष्ठ संख्या 523 अर्थ प्रदान किए। इस प्रकार फारसी साहित्य में जो आपत्तिजनक शब्द प्रयुक्त होते थे तसव्वुफ ने उनका प्रतीकीकरण कर उन्हें स्थूल लौकिकता से सूक्ष्म अलौकिकता की ओर उन्मुख किया। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में सूफी कवियों को अपने पूर्ववर्ती कवियों की भाषा विरासत में मिली थी, इसलिए उन्होंने अपनी रचनाओं में साकी शराब प्याला माशूक जुल्फ दीदार आदि शब्दों का यथेच्छ प्रयोग किया है, परंतु उनके आध्यात्मिक संकेत भी बता दिए हैं। 1 अतः साकी जैसा निकृष्ट शब्द गुरु का प्रतीक बना। साकिया बरखेजो दर देह जामरा खाक बरसर कुन गमे अयामरा 2 अर्थात ए साकी गुरु उठ और जामे मैं आध्यात्मिक प्रेम प्रदान कर और मेरे दुख के दिनों का अंत कर। हम प्रतीकों के संबंध में चतुर्थ अध्याय में विस्तार से विचार कर चुके हैं। इस प्रकार तसव्वुफ ने फारसी शब्द कोश को समृद्ध बनाया, नए शब्दों प्रतीकों बिंब विधानों द्वारा भाषा को विस्तार दिया, उसमें नव स्फूर्ति और प्राण फूंक दिए। एक एक शब्द कई अर्थों में प्रयुक्त होने लगा। इस संबंध में मौलाना शिबली का कथन उल्लेखनीय है। तसव्वुफ ने बहुत से नए अल्फाज शब्दों इस्तिलाहात पारिभाषिक शब्दों तलमिहात ऐतिहासिक अथवा काल्पनिक कथाएं या घटनाएं जबान में दाखिल कर दीं, जिनमें से एक एक लफ्ज ने बहुत से गुनागुन नाना प्रकार के ख्यालात के लिए रास्ता पैदा कर दिया और इस तरह शायरी को निहायत अत्यंत वसअत विस्तार मिल गई। 3 1 हकायके हिंदी प्राकथन काशी संवत 2014 पृष्ठ 6। 2 दीवाने हाफिज कानपुर मजीदी प्रेस पृष्ठ 12। 3 मौलाना शिबली शेरुल अजम भाग 5 लखनऊ सन 1922 ईस्वी पृष्ठ 108 पृष्ठ संख्या 524। उपर्युक्त उल्लिखित पारिभाषिक शब्दों तथा प्रतीकों का प्रयोग भाषा को दुर्बोध एवं अभिव्यक्ति को अस्पष्ट नहीं बनाता अपितु यह भावाभिव्यक्ति को और भी अधिक स्पष्ट आकर्षक एवं प्रभावशाली बना देता है। इनके माध्यम से सूफी कवियों ने अपनी मसनवियों गजलों आदि में अपने निगूढ़ विचारों का प्रकाशन एवं प्रचार किया है। सूफी कवियों की भाषा का रूप। सूफी कवियों की भाषा साहित्यिक फारसी है। केवल बाबा ताहिर उर्यान की दो बैतियां लोर भाषा में हैं, जो फारस की पश्चिमी पहाड़ियों के कबीलों की बोली है। इस प्रकार प्रायः सभी कवियों ने अपनी भाव लड़ियों को गूंथने के लिए तथा प्रेम पीर को मार्मिक अभिव्यंजना के लिए साहित्यिक फारसी ही को उपयुक्त माध्यम समझा और उसमें पूर्ण सफलता भी मिली। समष्टि रूप में कहा जा सकता है कि फारसी कवियों की भाषा सुमधुर, सरस, सजीव, सुकोमल, स्वच्छ, सुंदर, संगीतमय, प्रांजल, परिष्कृत और प्रवाहपूर्ण है। उनकी रचनाओं में सर्वत्र माधुर्य और प्रसाद गुणों की अधिकता है। उन्होंने सर्वत्र भावानुकूल भाषा ही लिखी है। भाषा में मुहावरों और लोकोक्तियों का भी उपयोग किया गया है। भाषा की दृष्टि से फारसी काव्य में सूफी कवियों का आदरणीय स्थान है। संक्षेपतः समस्त सूफी काव्य सरस भाषा और सुंदर प्रतीकों का प्रतीक है। सूफी काव्य के जनक सुल्तान अबू सईद अबुल खैर ने सूफी मत के रहस्यों को हृदयंगम कराने के लिए प्रतीकों का आश्रय लिया है। उनकी भाषा अत्यंत सहज, स्वाभाविक एवं स्पष्ट है, जो प्राचीन रचयिताओं का विशेष गुण है। वे किसी बात को घुमा फिरा कर नहीं कहते। बाबा ताहिर उर्यान ने अपने हृदय के उद्गारों की अभिव्यक्ति के लिए बोल चाल की लोर बोली को अपनाया है। उनकी भाषा परिष्कृत एवं साहित्यिक नहीं है, फिर भी उसका लालित्य तथा माधुर्य हृदय ग्राही है। उन्होंने विरह अनुभूतियों के सौ सौ स्पंदनों को वेदना की वाणी से मुखरित किया है। ख्वाजा अब्दुल्लाह अंसारी की भाषा की प्रमुख विशिष्टता है, पृष्ठ संख्या 525, संक्षिप्तता। एक छोटी सी रुबाई में न जाने वे कितने भाव भर देते हैं। उनकी भाषा में भर्ती के शब्द नहीं हैं। रुबाइयों में शब्द नपे तुले और आवश्यकता अनुसार हैं। उनकी भाषा की सबसे बड़ी बात यह है कि वह अल्पाक्षर होते हुए भी वृहत अर्थ को संभाले हुए है। भाषा बहुत सरस और सजी हुई है। संक्षेप में ख्वाजा अंसारी की भाषा में मनोभावों का प्रतिबिंब निर्मल दर्पण की भांति झलकता है। फारसी शायरी में तसव्वुफ की जड़ को जमाने वाले हकीम सनाई की काव्य प्रतिभा बहुमुखी थी। उन्होंने 7 मसनवियाँ और एक दीवान रचा। मसनवियों में से हदीका सर्वश्रेष्ठ है। हदीका की अपेक्षा दीवान की भाषा में अधिक प्रवाह है। मसनवियों और दीवान की भाषा परिमार्जित एवं प्रांजल है। मौलाना शिबली ने हकीम सनाई की भाषा शैली के संबंध में इस प्रकार लिखा है, कुदमा प्राचीन कवियों की शायरी अग्रचे नेचुरल शायरी थी, लेकिन तर्जे अदा शैली शायराना न था। जिस बात को कहना चाहते थे साफ बेतकल्लुफ अकृत्रिम सीधे सादे तौर ढंग प्रणाली पर कह देते थे। मामूली साधारण बात को अनोखे पिराया ढंग पद्धति में अदा करना या एक मामूली वाकिया वृत्तांत से मंतिकियाना इस्तिदलाल तर्कपूर्ण युक्तियां पैदा करना मुतवस्सितीन मध्यवर्ती और मुताखिरीन अवारचीन का जौहर गुण है, लेकिन इसके मूजिद आविष्कारक हकीम सनाई हैं। ख्वाजा फरीदुद्दीन अत्तार ने सूफी साहित्य कोश को अनेक अपूर्व ग्रंथ रत्नों से संपन्न किया। अपने साहित्य के परिमाण वैपुल्य भाव वैभव बहुमुखी प्रतिभा शैली प्रौढ़ता एवं भाषा मधुरता के कारण शेख अत्तार निश्चय ही ईरान के प्रथम कोटि के कवियों में से हैं। भाषा पर अच्छा आधिपत्य है। मौलाना शिबली ने लिखा है कि ख्वाजा साहिब ने तसव्वुफ के जो ख्यालात अदा किए हैं वह हकीम सनाई से ज़्यादा दकीक गहन नहीं, लेकिन जवान इस कद्र साफ है कि इस वस्फ गुण का गोया ऐसा कहना चाहिए उन पर खातिमा अंत हो गया। हर किस्म के ख्यालात इस बेतकल्लुफी सीधे सादे ढंग से रवानी और पृष्ठ संख्या 526 सादगी से अदा करते हैं कि नस्र गद्य में भी उससे ज़्यादा साफ अदा नहीं हो सकते। एक प्रोफेसर रामपूजन तिवारी के शब्दों में इनके कहने का ढंग अत्यंत ही सरल और स्पष्ट था। विषय निर्वाचन भी इनका बहुत सुंदर हुआ है। उनकी शैली सुबोध और स्पष्ट है। दो श्रेष्ठ सूफी कवियों एवं साधकों में मौलाना जलालुद्दीन रूमी का विशेष गौरवपूर्ण स्थान है। उन्होंने अपनी सुप्रसिद्ध मसनवी और एक दीवान से समस्त संसार में नाम कमाया है। मसनवी को तो फारसी भाषा का कुरान कहा जाता है। उसमें उन्होंने अपनी दिव्य अनुभूतियों को सुंदर सरस और सरल शब्दावली में व्यक्त कर फारसी के सर्वोत्कृष्ट कवियों में स्थान प्राप्त किया है। दीवाने में दिव्य प्रेम का विवेचन जिस भाषा में किया गया है वह बहुत ही स्तुत्य है। इस प्रकार मौलाना रूमी ने मसनवी एवं दीवान में सहज और स्वाभाविक भाषा का प्रयोग किया है। गजलों में संगीतात्मकता, शैली की कोमलता और भाषा की स्वाभाविकता सर्वत्र दृष्टिगोचर होती है। अन्य सूफी कवियों की नाई मौलाना रूम ने भी सूक्ष्माति सूक्ष्म भावनाओं की अभिव्यक्ति प्रतीकों द्वारा की है और इसमें पूर्णतः सफलता प्राप्त की है। शेख सादी ने अधिकतर नीति और आचार संबंधी कविताएं ही लिखी हैं, फिर भी उन्होंने सूफी मत के विचारों को अपनी सरस भाषा के माध्यम से अवतरित किया है। डॉक्टर अली असगर हिकमत के शब्दों में उन्होंने गद्य काव्य, गजलों और सदाचार की शिक्षाओं में अमर योगदान किया है। अपनी काव्य शैली में उन्हें इतनी पूर्णता मिली कि उन्हें युग के अंतिम कवि की उपाधि मिली। 3.1 मौलाना शिबली शेरुल अजम भाग 2 अलीगढ़ सन 1325 हिजरी पृष्ठ 12। 2 प्रोफेसर राम पूजन तिवारी सूफी मत साधना और साहित्य बनारस संवत 2013 विक्रम पृष्ठ 533। 3 डॉक्टर अली असगर हिकमत फारसी साहित्य की रूपरेखा बनारस सन 1957 ईस्वी पृष्ठ 125-26। डॉक्टर रिजा दादा शफक के मतानुसार यदि हम पृष्ठ संख्या 527 फारसी साहित्य के इतिहास में ऐसे उस्तादों से परिचित होना चाहते हैं जो एक विशेष शैली के आविष्कर्ता हैं और जिनका अनुकरण किया गया है, तो हमें सादी के ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। 1 शेख सादी को गजल का पैगंबर कहा जाता है। 2 निस्संदेह वे गजल के वास्तविक प्रवर्तक थे। उनकी एक एक गजल फारसी साहित्य रूपी रत्नाकर का जाज्वल्यमान रत्न है। शेख सादी की भाषा में मधुरता कूट कूट कर भरी हुई है। प्रसाद गुण भी सर्वत्र दृष्टिगोचर होता है। उनकी भाषा अत्यंत सरल और प्रवाहमयी है। शेख सादी की शब्द योजना बड़ी सुंदर है। सर्वत्र कोमल कांत पदावली ही दृष्टिगोचर होती है। उनकी भाषा में मुहावरों का भी सफल प्रयोग हुआ है। शेख सादी की भाषा संगीतमयी है। कहीं कहीं व्यंगपूर्ण कथन भी हैं जिनसे भाषा रोचक हो गई है। भाषा पर कवि का पूर्ण अधिकार है। निस्संदेह सादी फारसी साहित्य के महान कवि हैं। उनकी प्रतिभा सूर्य की भांति प्रोद्भासित होती रही है और होती रहेगी, और उनका अलौकिक काव्य कौशल परवर्ती कवियों को चिरकाल तक काव्य सृजन की प्रेरणा देता रहा है और देता रहेगा। 1 डॉक्टर रिजा तदा शफक तारीख़ अदबियात ईरान 1336-1337 पृष्ठ 252। 2 दरशेर सिंह तन पयंबर अंध हरचंद की लानवी वादी अव्यातो कसीदा ओ गजल रा फिर दौसी ओ अनवरी ओ सादी। प्रोफेसर ब्राउन अ लिटरेरी हिस्ट्री ऑफ पर्शिया भाग 2 लंदन सन 1920 ईस्वी पृष्ठ 116-365-525। अर्थात यद्यपि हजरत मोहम्मद के पश्चात कोई नबी ईश्वर अवतार नहीं हुआ, तथापि काव्य के 3 पैगंबर अवतार हुए हैं। मसनवी, कसीदा और गजल के क्रमशः फिरदौसी, अनवरी एवं सादी नबी हैं। पृष्ठ संख्या 528। अहदुद्दीन किरमानी की भाषा स्वच्छ एवं सुंदर है। शेख ईरानी हमदानी भी इस परंपरा के एक विशिष्ट सूफी एवं फारसी काव्य में लोकोत्तर प्रेम के अमर कवि हैं। उनकी प्रतिभा अप्रतिम है। उनकी काव्य संपदा भाव एवं भाषा दोनों दृष्टियों से विपुल है। प्रतीकों के प्रयोग द्वारा उनके काव्य में निखार आ गया है। निस्संदेह उनका सूफी काव्य देदीप्यमान और मनोमुग्धकारी है। शेख महमूद शबिस्त्री की गणना उच्च कोटि के सूफियों और कवियों में होती है। वे सूफी पहले थे और कवि बाद में। उनकी 2 मसनवियों गुलशने राज तथा सआदत नामा में से गुलशने राज अत्यंत ख्याति प्राप्त है। गुलशने राज प्रश्नोत्तर रूप में है। सूफी मत विषयक प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 शेरों में देकर कवि ने अपनी भाषा की समास शक्ति का परिचय दिया है। एक एक उत्तर में कितने ही भावों को भर दिया है। लगता है कि कवि ने गागर में सागर भरने की उक्ति को चरितार्थ कर दिया है। उनकी भाषा में सरसता, सरलता तथा प्रवाह आदि गुण भी विद्यमान हैं। उन्होंने तसव्वुफ की गुत्थियों को प्रतीकों द्वारा भी सुलझाया है। प्रतीकों का यह प्रयोग भावाभिव्यक्ति को और अधिक स्पष्ट, रोचक तथा आकर्षक बनाता है। प्रोफेसर ब्राउन के मतानुसार सूफी धर्म ग्रंथों में गुलशन ए राज का स्थान बहुत ऊंचा है। प्रोफेसर ब्राउन अ लिटरेरी हिस्ट्री ऑफ पर्शिया भाग 3 कैम्ब्रिज सन 1951 ईस्वी पृष्ठ 148। हमारे विचार में यद्यपि उसकी शैली सहज ढंग की है, तथापि दार्शनिकता के बोध से कविता यत्र तत्र बोझिल सी हो गई है। अहदुद्दीन किरमानी के शिष्य अहदी मरागी ने सनाई की भांति मसनवियां और एक दीवान लिखा है। सनाई ने तो 7 मसनवियां पृष्ठ संख्या 529 लिखी थी। उन्होंने केवल 2 1 इन दो में से मसनवी जामे जम अधिक श्रेष्ठ है। इसमें संदेह नहीं कि ओहदी मरागी ने हकीम सनाई का अनुकरण करते हुए उसे उसी बहर खफीफ मुसद्दस मखबून मकतुआ में लिखा है जिसमें सनाई ने हदीका को लिखा है, परंतु जामे जम की भाषा में अधिक सरसता सरलता और प्रवाह है। दीवान की भाषा सनाई के दीवान की भाषा की भांति मधुरिमा से ओतप्रोत है। सर्वत्र कोमल कांत पदावली ही दृष्टिगोचर होती है। तर्जुमानुल असरार स्वर्गिक रहस्यों के व्याख्याता, लिसानुल गैब अदृश्य की वाणी, ख्वाजा शमसुद्दीन मोहम्मद हाफिज का नाम महाकवि के रूप में फारसी सूफी साहित्य के इतिहास में सदैव स्वर्णाक्षरों में अंकित रहेगा। उनकी गजलों को जो लोकप्रियता प्राप्त हुई है वह शायद ही किसी और कवि को प्राप्त हुई हो। उन्होंने प्रतीकों द्वारा सूफियाना रहस्यों को हृदयंगम कराया है। हाफिज की गजलों की गेयता और मधुरता उनकी लोकप्रियता का सबसे बड़ा कारण है। वे शब्द योजना में पूर्ण सफल रहे हैं। हाफिज का सा भाषा सौष्ठव बहुत कम कवियों की रचनाओं में दृष्टिगोचर होता है। निस्संदेह वे कुशल शब्द शिल्पी हैं। ख्वाजा हाफिज के दीवान के सफल अनुवादक मिस्टर ओंसले ने उनकी भाषा के संबंध में इस प्रकार लिखा है, उनकी भाषा मुहावरेदार सुंदर तथा बनावट से रहित है। शैली को देखने से ही पता चल जाता है कि लेखक उच्च कोटि का विद्वान है और उसे दृश्य तथा अदृश्य वस्तुओं का पर्याप्त ज्ञान है। इसके अतिरिक्त भाषा में एक ऐसा आकर्षण है जो अन्य कवियों की रचनाओं में नहीं पाया जाता। दो एक श्री यूषा के मतानुसार ओहदी किरमानी ने तीन मसनवियाँ लिखीं, दीवाने ओहदी, संपादक यूषा, भूमिका मद्रास, सन 1951 पृष्ठ 6। दो श्री बांके बिहारी तथा श्री कन्हैया लाल ईरान के सूफी कवि इलाहाबाद, संवत 1996 विक्रम पृष्ठ 318 पृष्ठ संख्या 530। मगरिबी की कविता सर्वथा अद्वैतवादी भावों से ओतप्रोत है। उनकी साधारण शब्दावली भी ऐसे भावों को व्यक्त करने में समर्थ रही है। कहीं कहीं शब्द योजना इतनी सुमधुर और सरस है कि देखते ही बनती है। वे प्रायः एक ही बात को एक ही शैली में बार बार कहते हैं जिससे पुनरुक्ति दोष उत्पन्न हो गया है। मौलाना नूरुद्दीन अब्दुल रहमान जामी सूफी काव्य के सर्वोत्कृष्ट कवियों में से हैं और उनका फारसी साहित्य के इतिहास में विशिष्ट स्थान है। उन्होंने काव्य के प्रत्येक अंग, कसीदा, गजल, मसनवी आदि पर बड़े कौशल से लेखनी चलाई है। उन्होंने 7 मसनवियाँ लिखीं जिनमें यूसुफ जुलेखा प्रसिद्धतम है। इसे ही आदर्श मानकर हिंदी सूफी कवियों ने ग्रंथ रचे। इस संबंध में कवि निसार एवं नसीर के नाम उल्लेखनीय हैं। मौलाना जामी की भाषा सुबोध, साहित्यिक, परिष्कृत एवं प्रांजल है। उसमें लालित्य एवं अजस्त्र प्रवाह है। मधुरता तो कूट कूट कर भरी हुई है। संक्षेपतः मौलाना जामी का भाषा पर पूर्ण आधिपत्य है। उन्होंने सूफी मत के गहन विचारों को प्रतीकों के माध्यम से भी अपने ग्रंथों में अवतरित किया है, किंतु उनकी प्रख्यात मसनवी यूसुफ जुलेखा के निम्न अध्याय की भाषा में अश्लीलत्व दोष विद्यमान है। दर आबुर दनेस जुलेखा यूसुफ रा बखाना ए हफ्तम व मकसूदे खुद अजू खास्तन एक, अर्थात जुलेखा का यूसुफ को सातवें घर में ले जाना और अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए कहना। मौलाना जामी के उपरांत 16वीं शती ईस्वी में सफवी शासकों के राज्यकाल में जब ईरान में शेरो शायरी का बाजार सर्द हो गया और सूफी काव्य प्रायः ह्रास एवं पतन के गर्त में गिर गया तो उर्फी शिराजी भारतवर्ष में आ गए। कवि उर्फी ने कसीदे, गजलें, 2 मसनवियाँ, कतात और एक गद्य ग्रंथ लिखा। उर्फी का भाषा पर पूर्ण अधिकार है। एक यूसुफ जुलेखा नवल किशोर प्रेस कानपुर सन 1896 ईस्वी पृष्ठ 195 206 उनकी पृष्ठ संख्या 531। भाषा चलती हुई सरस सरल और सुबोध है। वह सर्वथा स्वच्छ निर्मल और निर्दोष है। उनकी कविता सूर्य के समान भासमान है। निष्कर्ष उपर्युक्त विवेचन के अनंतर कहा जा सकता है कि सूफी काव्यकार साधक और कवि दोनों थे। अतएव उनके लिए शैली और भाषागत गुणों का जितना महत्व था उतना ही विषय वस्तु का भी। उन्होंने काव्य के माध्यम से सरल सरस और साहित्यिक भाषा में अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है और आध्यात्मिक अनुभूतियों का प्रकाशन किया है। हिंदी सूफी कवियों से पूर्व भाषा का स्वरूप जिस प्रकार फारसी सूफी कवियों ने अस्थिर एवं विकृत फारसी भाषा को दोष मुक्त करके उसमें नव स्फूर्ति तथा प्राण फूंक दिए थे, उसी प्रकार हिंदी सूफी कवियों ने अव्यवस्थित भाषा को स्थिरता, स्वाभाविकता एवं एक रूपता प्रदान कर महत्वपूर्ण कार्य संपन्न किया। बोलचाल की भाषा का जो निखरा हुआ रूप और माधुर्य उनके काव्यों में प्राप्त होता है वह अन्यत्र दुर्लभ है। डॉक्टर शिव सहाय पाठक के शब्दों में अवधि भाषा का परिष्कृत और स्वाभाविक दोनों रूप गंगा जमुना संगम की भांति सूफी काव्य की भाषा में दर्शनीय है। जायसी, कुतुबन आदि सूफियों की विशेषता यह है कि उन्होंने बोलचाल की अवधि में सहज सरल किंतु गूढ़ गंभीर अर्थपूर्ण और समर्थ व्यंजनाएं की हैं। डॉक्टर शिव सहाय पाठक, मलिक मोहम्मद जायसी और उनका काव्य कानपुर, सन 1964 ईस्वी, पृष्ठ 369। सूफी कवियों ने सर्वत्र ललित मधुर एवं सुबोध ठेठ अवधि भाषा का प्रयोग किया है। निस्संदेह ठेठ तथा तद्भव शब्द रूपों, लोक प्रचलित उक्तियों एवं मुहावरों आदि की दृष्टि से सूफियों के प्रेमाख्यान लोक भाषा के महाकोश हैं। हिंदी सूफियों के पूर्ववर्ती कवियों का हमारे साहित्य में अभाव नहीं है, वरन उनकी संख्या पर्याप्त है। उनमें महाकाव्यकार भी हैं, गीती काव्यकार भी हैं और फुटकरिये भी, परंतु उनमें से प्रायः किसी का काव्य न तो पृष्ठ संख्या 532 छेपकों से मुक्त उपलब्ध होता है, न उनकी भाषा का ठिकाना है। चंद प्रणीत पृथ्वीराज रासो एक विशद महाकाव्य है, परंतु उसमें प्रक्षिप्तांश की पर्याप्त मात्रा है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में चंद का रासो अपने मूल रूप में सुरक्षित नहीं रह सका है, इसमें बहुत प्रक्षेप हुआ है। एक, अतएव भाषा में एक रूपता नहीं है, इसे मूलतः किस भाषा की निधि माना जाए यह एक समस्या है। इस ग्रंथ में संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, प्राचीन राजस्थानी के अतिरिक्त पंजाबी, ब्रज भाषा, खड़ी बोली और यहाँ तक कि अरबी, फारसी, तुर्की आदि भाषाओं के शब्द एवं वाक्य उपलब्ध हो जाते हैं। पंडित विश्वनाथ गौड़ के कथनानुसार स्वभावतः तत्कालिक प्रवृत्ति के अनुसार राशो की भाषा भी डिंगल ही होनी चाहिए थी, किंतु उसकी भाषा निरी डिंगल नहीं है, वरन उसमें अनेक भाषाओं का सम्मिश्रण पाया जाता है। ध्यान देने की बात है कि जिस प्रकार राशो की प्रामाणिकता के संबंध में विद्वानों का बड़ा मतभेद है, उसी प्रकार इसकी भाषा के संबंध में भी है, किंतु रासो की भाषा का अध्ययन करने से स्पष्ट हो जाता है कि इसकी भाषा एक खिचड़ी भाषा है, जिसमें डिंगल, पिंगल और आधुनिक भाषा के रूप भी मिलते हैं। भाषा के इन्हीं आधुनिक प्रयोगों को देखकर शंका होती है कि यह एक अवार्चीन रचना है। शब्द भंडार की दृष्टि से देखने पर भी रासो की भाषा में अनेक रूपता दिखाई देती है। दो, अन्य रासो आदि अथवा लोक भाषा का साहित्य भाषा की कसौटी पर पूरा नहीं उतरता। तीन, एक, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, हिंदी साहित्य का आदिकाल, पटना, विक्रम संवत 2009, पृष्ठ 20। दो, पृथ्वीराज रासो पद्मावती, समय संपादक पंडित विश्वनाथ गौड़, कानपुर, सन 1949 ईस्वी, रासो परिचय, पृष्ठ 60-61। तीन, हिंदी साहित्य के आदिकाल में दो प्रकार की रचनाएं प्राप्त हुई हैं, एक तो जैन भंडारों में सुरक्षित और अधिकांश में जैन प्रभावपन्न परिनिष्ठित साहित्यिक अपभ्रंश की रचनाएं हैं, और दूसरी ओर लोक परंपरा में बहती हुई आने वाली और मूल रूप से अत्यंत भिन्न बनी हुई लोक भाषा की रचनाएं। दूसरी श्रेणी में पृथ्वीराज रासो और परमाल रासो आदि रचनाएं हैं, जिनके मूल रूप बहुत परिवर्तित और विकृत हो गए हैं, इन्हें हम संदिग्ध ग्रंथ कह सकते हैं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, हिंदी साहित्य, दिल्ली, सन 1955 ईस्वी, पृष्ठ 94। कारण यह है कि ये ग्रंथ पहले लिपिबद्ध नहीं थे, मौखिक, पृष्ठ संख्या 533 होने के कारण इनकी भाषा का वास्तविक स्वरूप सुरक्षित नहीं रह सका। लोगों ने प्रक्षेप करके मौलिक भाषा को विकृत कर दिया, भाषा मिश्रित हो गई है, यह एक बेमेल खिचड़ी है। भक्तिकालीन ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रवर्तक एवं सर्वश्रेष्ठ कवि होने के नाते कबीर का हिंदी साहित्य के इतिहास में विशिष्ट स्थान है। उनकी भाषा में एक रूपता तथा स्थिरता का अभाव है, भाषा में यत्र तत्र अस्पष्टता और असंयतता के दर्शन होते हैं। कबीर ने अपनी रचनाएं लिखी नहीं, वरन गा गाकर सुनाई, अतः बाद में लिपिबद्ध होते समय उनमें परिवर्तन हो गए। श्री तेज नारायण टंडन एवं श्री योगेंद्रनाथ शर्मा के अनुसार भी अधिकांश कविता की भाषा लोगों ने बदल दी है। बहुत से दोहे तथा पद जो आजकल प्राय प्रचलित हैं और ग्रंथों में पाए जाते हैं, उनके शब्दों का बहुत रूपांतर हो गया है। जैसे कबीर मेरा मुझ मही, किछु नहीं जो किछु है सो तेरा, तेरा तुझ कौ सऊ पते, किया लागे मेरा, अब ये पंक्तियां पुस्तक में इस प्रकार मिलेंगी। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मोर। कबीर वाणी, संपादक श्री तेज नारायण टंडन तथा श्री योगेंद्र नाथ शर्मा, कवि परिचय, लखनऊ, सन 1952 ईस्वी, पृष्ठ 13-14। कबीर दास साक्षर नहीं थे, इसे तो सभी स्वीकार करते हैं। रचना आरंभ करने के पहले अथवा कभी पीछे उन्होंने किसी भाषा विशेष पर अधिकार प्राप्त नहीं किया, अतः उनका अनेक भाषाओं से प्रभावित होना स्वाभाविक था। अपनी बोली के विषय में उन्होंने स्वयं लिखा है, मेरी, पृष्ठ संख्या 534, बोली पूर्वी, किंतु यह पूर्वी बोली है कौन सी? उनकी भाषा देखने से तो यही ज्ञात होता है कि वह न पूर्वी है और न पश्चिमी, परंतु एक ही हांडी में पंजाबी, ब्रज, राजस्थानी, अवधी, मैथिली, बंगाली, अरबी, फारसी आदि को चढ़ाकर पकाया हुआ सधुक्कड़ अन्नकूट है। इस संबंध में डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत का मत उल्लेख्य है। मेरा तो अनुमान यह है कि कबीर की भाषा में यदि देखा जाए और खोज की जाए तो भारत की प्रत्येक भाषा का कुछ न कुछ प्रभाव दिखाई देगा। यही कारण है कि उनकी रचनाओं में मारवाड़ी, राजस्थानी, पंजाबी, भोजपुरी आदि के बहुत से रूप मिलते हैं। कबीर की भाषा पूर्ण सधुक्कड़ी है। डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत, कबीर की विचारधारा, कानपुर, संवत 2009, विक्रम, पृष्ठ 420। एक कारण यह भी है कि कबीर से पूर्व हिंदी का कोई स्थिर रूप नहीं था, अतः कबीर की भाषा में स्थिरता तथा एकरूपता नहीं मिलती। इस भाषा सम्मेलन का दूसरा कारण यह है कि उनकी स्वयं की कोई भाषा नहीं थी तथा उनका शब्द भंडार भी सीमित था, अतः विभिन्न दिशाओं के एवं विभिन्न मतों के अनुयायियों एवं साधकों के साथ भावों के आदान प्रदान का प्रभाव उनकी भाषा पर पड़ा। उनकी भाषा के संबंध में एक और स्थिति भी विचारणीय है। कबीर दास काशी में जुलाहा जाति में पालित और वर्धित हुए। प्रसिद्ध यह है कि ये किसी विधवा ब्राह्मणी के पुत्र थे। माता ने सामाजिक भय से काशी के लहरतारा तालाब के पास इन्हें फेंक दिया था। वहीं नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपति ने इन्हें प्राप्त किया और पाल पोसकर बड़ा किया। यह प्रसिद्धि कहाँ तक सत्य है यह नहीं कहा जा सकता, पर निर्विवाद बात यह है कि ये काशी के जुलाहा जाति में पालित और वर्धित हुए थे। डॉक्टर हजार प्रसाद द्विवेदी, हिंदी साहित्य, दिल्ली, सन 1955 ईस्वी, पृष्ठ 118। मगहर में परलोक गामी हुए, बहुत लंबी यात्रा की और उनके पदों का संग्रह पृष्ठ संख्या 535 पंजाब में ग्रंथ साहित्य में भी हुआ। इसलिए कबीर दास के काव्य का संबंध प्रायः समस्त भारतवर्ष की भाषाओं से स्थापित हो गया। एक और बात भी विचारणीय है, कबीर वैष्णव महात्मा रामानंद के शिष्य थे। शेख तकी आदि सूफी फकीरों के संपर्क में आए थे, अतः उनका इन दोनों संप्रदायों की शब्दावली से परिचित होना स्वाभाविक था। सत्संग ही से कबीर ने हठ योग आदि के शब्द सीख लिए थे। मुसलमान शासकों के शासन के परिणाम स्वरूप उनकी भाषा में अरबी और फारसी के शब्दों का सम्मिश्रण हो गया। वे कहीं कहीं पद के पद ऐसे कह गए हैं जिनमें अरबी और फारसी के शब्दों का बाहुल्य है। इन्हीं सब कारणों से कबीर दास की भाषा खिचड़ी या सधुक्कड़ी हो गई। इसी प्रकार अन्य संत कवियों की भाषा में अनेक रूपता, अस्पष्टता एवं असंयतता है। वस्तुतः वे भाषा के पारखी न थे, वे संत पहले थे, कवि बाद में। उनके लिए काव्य काव्य के लिए का कोई मूल्य नहीं था। वास्तव में कविता करना तो उनका लक्ष्य भी नहीं था। कविता को तो उन्होंने जनता तक अपने विचारों को पहुँचाने का एक माध्यम मात्र बनाया था। वे अशिक्षित थे। एक, मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ वाली उक्ति प्रायः सभी संत कवियों पर चरितार्थ होती है, इसलिए प्रायः उनकी भाषा अटपटी है और वाणी ऊटपटांग। वे अपने मत का प्रचार एवं प्रसार करने तथा ज्ञान लाभ करने के लिए इधर उधर भ्रमण करते रहे। भारत के विविध प्रांतों के साधकों से उनका सत्संग होता रहा। एक, संत कवियों में सुंदर दास सुशिक्षित थे। आचार्य शुक्ल के शब्दों में निर्गुण पंथियों में ये सुंदर दास ही एक ऐसे व्यक्ति हुए हैं जिन्हें समुचित शिक्षा मिली थी और जो काव्य कला की रीति आदि से अच्छी तरह परिचित थे, अतः इनकी रचना साहित्यिक और सरस है। भाषा भी काव्य की मंजी हुई ब्रजभाषा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हिंदी साहित्य का इतिहास, काशी, संवत 2003, विक्रम, पृष्ठ 87। अतएव उनकी भाषा में प्रांतीय भाषाओं का पृष्ठ संख्या 536 अत्यधिक पुट है। संतों की खिचड़ी भाषा में जहाँ हमें बतियाँ, रतियाँ पूर्वी भाषा के शब्द मिलते हैं, वहाँ पंजाबी के कदे, नाली, ब्रज के धरव, जरें, खड़ी बोली के आऊंगा जाऊंगा, मैथिली के भैला वैला, संस्कृत के सूक्ष्म स्थूल, अरबी के खालिक आशिक, फारसी के राह नमाज आदि शब्द प्रचुर संख्या में मिलते हैं। इस संबंध में डॉक्टर श्याम सुंदर दास के ये शब्द उल्लेखनीय हैं। मध्य युग के धार्मिक प्रचार संबंधी आंदोलन ने प्रचारकों को जनता के हृदय तक पहुंचने की आवश्यकता का अनुभव कराया। इसके लिए जनसाधारण की भाषा का ज्ञान और उसका उपयोग निर्गुण पंथी संत कवियों को अनिवार्य ज्ञात हुआ। इसी आवश्यकता के वशीभूत होकर उन्होंने जनसाधारण की भाषा को अपनाया और उसमें कविता की, परंतु वे उस कविता को माधुर्य आदि गुणों से अलंकृत न कर सके और न किसी एक बोली को अपनाकर उसके शुद्ध रूप का उपयोग कर सके। उनके अपड़ होने, स्थान स्थान के साधु संतों के सत्संग और भिन्न भिन्न प्रांतों तथा उसके उपखंडों में जिज्ञासा की तृप्ति के लिए पर्यटन एवं प्रवास ने उनकी भाषा में एक विचित्र खिचड़ी पका दी। डॉक्टर श्याम सुंदर दास, हिंदी भाषा, प्रयाग, सन 1951 ईस्वी, पृष्ठ 48।